नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय बजट में बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए 10,379 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने कहा, अंचलाधिकारियों की हड़ताल समाप्त, समस्या की स्थायी समाधान के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्णय, इंटर परीक्षा देने से वंचित विद्यार्थियों को मिलेगा परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित एनडीए सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। इस बजट के कई मायनों में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों के जानकार और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी पटना में एसोसिएट प्रोफेसर सुधांशु कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि इस बार के बजट में 7 निश्चय 3 पर फोकस के साथ ही रोजगार पर सरकार का विशेष बल रहने की संभावना है।
राज्य सरकार ने अभी तक तो अपने राजकोषीय संसाधनों का बड़ा ही समुचित प्रबंधन करते हुए राज्य के विकास को काफी गति दी है। इससे अपेक्षा बन रही है कि इस बजट में भी राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना, इन सब के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार, सरकारी नौकरियों से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के लिए व्यवस्था किए जाएंगे और इस तरह के प्रयास से राज्य के विकास को एक नई दी जा सके। जैसा कि हमने देखा है कि राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 की घोषणा की है और इसके तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो ऐसा भी उम्मीद है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों का कैसे प्रयोग करती है, उसका भी एक विवरण हमें आने वाले बजट में दिख सकता है।
इससे पहले कल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री श्री यादव ने राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3.3% अधिक है, जो राज्य की तेज आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार के हर व्यक्ति की आमदनी प्रति वर्ष मौजूदा 76,490 रुपए से बढ़कर 1,52,000 रुपए से अधिक हो जाएगी। इसके लिए 5 साल में 1 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2021 में 46,412 रुपए से बढ़कर 2425 में 76,490 रुपए हो गया।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ही सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में कल पटना में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आयोजित बैठक बेनतीजा रहने के बाद ये फैसला लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए 10,379 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सोनपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि बिहार में 1,09,158 करोड़ रुपए की लागत से रेल अधोसंरचना पर काम चल रहा है। प्रदेश में 3,287 करोड़ रुपए की लागत से 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है।
बिहार में रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ है। बिहार में रेलवे के लिए 10,379 करोड़ रुपीस का बजट आवंटित हुआ है। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। साथियों, बिहार में करीब 14 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और 21 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है, और इस रिकॉर्ड बजट से बिहार के बहुत सारे प्रोजेक्ट में बेनिफिट होगा, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लिए जा सकेंगे।
रेल मंत्री ने बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक किया जाएगा। इसके लिए 704 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि अंचलाधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में विभागीय बैठक के बाद यह जानकारी दी। श्री सिन्हा ने कर्मचारियों की सभी आपत्तियों पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है।
हमारा प्रयास है कि उनका जो सही डिमांड है हम उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। जो काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान भी करते हैं और वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और हमने कहा है कि एक कमेटी बना देते हैं और वह कमेटी तय करेगी कि इनके प्रमोशन का, इनके सेवा में अधिकार के सारे विषय पर नियमानुकूल वो देखेंगे और देखकर उसका समाधान करेंगे।
इधर बिहार राजस्व सेवा संघ ने कहा है कि उनकी मांगों के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद ही हड़ताल समाप्ति की घोषणा की जाएगी। पटना की एक अदालत ने मोकामा से जदयू के नवनिर्वाचित विधायक अनंत कुमार सिंह को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। अनंत कुमार सिंह आज विधानसभा में शपथ लेंगे। गौरतलब है कि वे दुलालचंद यादव की हत्या के मामले में पिछले 3 महीने से जेल में बंद हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि विभिन्न कारणों से इंटर परीक्षा देने से वंचित रहे विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि जिनकी परीक्षा छूटी है उन्हें अप्रैल में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इधर परीक्षा के पहले दिन कल कदाचार और नकल करने के आरोप में 8 जिलों से 26 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। सबसे अधिक नवादा में 13 परीक्षार्थियों निष्कासित किए गए हैं। इसके अलावा जहानाबाद और गोपालगंज से 3-3, मधेपुरा और भागलपुर से 2-2 जबकि गया, अररिया तथा कटिहार से 1-1 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। वहीं शेखपुरा से दूसरे के बदले परीक्षा देने के मामले में 1 छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम अप्रैल तक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 71वीं बीपीएससी मेन परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से 50 विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 17,105 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने नौकरी दिलाने और ट्रेडिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा के आरोप में पटना से 15 युवतियों समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध इकाई और साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पटना के रूपसपुर नहर स्थित वेद नगर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान गिरोह के सरगना नालंदा निवासी विवेक कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। इधर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक सुधीर कुमार के बैंक लॉकर से 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण जब्त किए हैं। गौरतलब है कि निगरानी की टीम ने पिछले दिनों सुधीर कुमार को 19,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। दूसरी ओर पटना जिला प्रशासन ने पटना व्यवहार न्यायालय के पास एक सरकारी नोटरी के चैम्बर से बड़ी संख्या में फर्जी स्टाम्प बरामद किया है। आज शबे बारात है। इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15 तारीख को शबे बारात का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर लोग विशेष इबादत करते हैं और पूर्वजों के लिए दुआएं करते हैं। इस अवसर पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर विशेष प्रकाश की व्यवस्था की गई है। कल शाबान का रोजा रखा जाएगा। इधर प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना सहित पूरे प्रदेश में दंडाधिकारियों की तैनाती की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शबे बारात के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले समेत आसपास के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इधर आज राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत कई स्थानों पर घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। अररिया जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए सितारा योजना उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण और जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ इकाई के निदेशक शंभू कुमार रजक समेत अन्य गणमान्य लोगों ने किया। वहीं जिले के फारबिसगंज अनुमंडल में भारतीय पुलिस सेवा के महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय पटना द्वारा डॉल्फिन वेलनेस ओजस सेंटर का उद्घाटन किया गया। खगड़िया जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 का औपचारिक शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में शबे बारात के पूर्व मदरसा जामिया इस्लामिया कुरानिया सेमरा में 24वें दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब खेल से जुड़ी खबरों पर एक नजर। महाराष्ट्र में आयोजित 69वीं नेशनल स्कूल कराटे चैंपियनशिप में बिहार ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते हैं। सौम्या शाश्वत ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं अनन्या सिंह ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। युवराज आदर्श ने 54 किलोग्राम में और सिद्धार्थ वर्मा ने 82 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नागालैंड के सोविमा में खेले गए सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के मैच में बिहार ने नागालैंड को 1 पारी और 198 रनों से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही बिहार की टीम फाइनल में प्रवेश कर गई है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अखिल भारतीय अंतर साई ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक। दैनिक जागरण ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार, विकास दर 13.1%। दैनिक भास्कर ने भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अमेरिका से सशर्त ट्रेड डील, ट्रंप का दावा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। प्रभात खबर लिखता है, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बिहार में 500 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय बजट में बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए 10,379 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने कहा, अंचलाधिकारियों की हड़ताल समाप्त, समस्या की स्थायी समाधान के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्णय, इंटर परीक्षा देने से वंचित विद्यार्थियों को मिलेगा परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।